सात आठ बजे तक काट हो जाना चाहिए नहीं क्लास का जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय ओम विष्णुपाल परमहंस परिराज कचार्य विष्णु पर सरस्वती श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कान विभिति फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की निताय ज्योतिमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से नवम स्कंद अध्याय 15 भगवान का युद्ध्यावतार परशुराम। आज इस अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। पहला चार श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है। पांच श्लोक छठा पांच और छह दोनों एक साथ में उसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी के थोड़े से हैं, इसलिए मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ, खुद पढ़ रहा हूँ कि चार नंबर पांच नंबर श्लोक तक, बाद में छह नंबर आवृत्ति करेंगे। श्री बादरायणी रुवाच एलस्य च उर्वशीर्गर्भात् तडासन्नात्मजा नृप आयुषुतायु सत्यायु रयो अथ विजयो जयः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, पुरुरवा ने उर्वशी की गर्भ से छह पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय तथा जय। सुतायोर वसुमान पुत्र सत्यायोश्च सुतंजय रयस्य सुतैकस्य जयस्य तनयो अमितः। धीमस्तु विजय स्याथ कांचन यत्र कस्ततः तस्य जन्नु सुतगंगं गंडुशीकृतः यो अपिवत्। सुतायु का पुत्र वसुमान हुआ, सत्यायु का पुत्र सुतंजय हुआ, रय का पुत्र एक था, जय का पुत्र अमित था और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम का पुत्र कांचन, कांचन का पुत्र होत्रक और होत्रक का पुत्र जन्नु, जिन्होंने एक ही घूंट में गंगा का सारा पानी पी लिया। जन्नुस्थु पुरस्तस्याथ बलाकस्यात्मजो अजकः ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्भुस्तनयो वसुः कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत् कुशाम्भुजः। जन्नु का पुत्र पुरु था, पुरु का बलाक, बलाक का अजक और अजक का पुत्र कुश हुआ। कुश के चार पुत्र हुए जिसके नाम से कुशाम्भुज, कनय, वसु तथा कुशनाभ। कुशाम्भु का पुत्र गाधी था। तस्य सत्यवतीं कन्यां रुचिकाजात द्विज वरं विसदृशं मत्वा गाधीर्भार्गव अब्रवीत। ये दोनों श्लोक साथ में है लेकिन लास्ट श्लोक लिखा है। एकत श्याम कर्णानां शयानं चंद्रवत् साम सहस्रं दियतां शुल्कं कन्याया कुशिका वयम् एकतः श्याम कर्णानां भयानां चंद्रवर्षसां सहस्रं दियतां शुल्कं कन्याया कुशिका वयम् एकतः श्याम कर्णानां भयानां चंद्रवर्षसां सहस्रं दियतां शुल्कं कन्याया कुशिका वयम्
Yeah.
तो ये दोनों श्लोक 5 और 6 के अनुवाद एक साथ में है। अनुवाद, गाधी के एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था, जिससे विवाह करने के लिए रुचिक नामक ब्रह्मर्षि ने राजा से विनती की, किंतु राजा गाधी ने इस ब्रह्मर्षि का अपनी पुत्री के लिए अयोग्य पति समझ कर उससे कहा, महोदय मैं कुशवंशी हूँ, क्योंकि हम लोग राजसी क्षत्रिय हैं, अतएव आपको मेरी पुत्री के लिए कुछ दहेज देना होगा, अतः आप कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी के तरह उज्जवल हों और जिनके एक उल्टा या सीधा काला कान हो। तात्पर्य, राजा गाधी का पुत्र विश्वामित्र हुआ, जो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का मिश्रित रूप था। विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। रुचिक मुनि के साथ सत्यपति का विवाह होने से उनका जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय होगा। राजा गाधी ने कहा कि वह अपनी पुत्री की शादी तभी कर सकता है जब उसकी यह असाधारण मांग पूरी हो जाए। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्नि। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पश्चाद्यदेशतारिणि। नमः वदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्य सत्यवतीं कन्यां रुचिको अजाचतः द्विजः वरं विषदृशं मत्वा गाधीर्भारव अब्रवीत। ಏಕತಃ ಶ್ಯಾಮಕರ್ಣಾನಂ ಹಯಾನಾನ್ ಚಂದ್ರ ವರ್ಚಸಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿಯತಾನ್ ಶುಳ್ಕಂ ಕನ್ಯಾಯ ಕುಸಿಕಾ ವಯಂ. ಗಾಧಿ ಕೆ ಏಕ ಪುತ್ರಿ ಥಿ ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ಸತ್ಯವತಿ ಥಾ, ಜಿಸ್ಸೆ ವಿವಾಹ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಋಷಿಕ ನಾಮಕ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನೆ ರಾಜಾ ಸೆ ವಿನಂತಿ ಕಿ. ಕಿಂತು ರಾಜಾ ಗಾಧಿ ನೆ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಕೋ ಅಪನಿ ಪುತ್ರಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಪತಿ ಸಮಜ್ಕರ್ ಉಸ್ಸೆ ಕಹಾ, ಮಹೋದಯ ಮೇ ಕುಶವಂಶಿ ಹೂ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹಮ್ ಲೋಕ ರಾಜಸಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹೇ, ಅತಏವ ಆಪ್ಕೋ ಮೇರಿ ಪುತ್ರಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕುಶ ದೇಹಜ ದೇನಾ ಹೋಗಾ, ಅತ ಆಪ್ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ 1000 ಏಸೆ ಘೋಡೆ ಲಾಯೆ ಜೊ ಚಾಂದನಿ ಕಿ ತರಹ ಉಜ್ಜ್ವಲ ಹೋ, ಔರ್ ಜಿನ್ಕೆ ಏಕ ಉಲ್ಟಾ ಯಾ ಸೀಧಾ ಕಾಲಾ ಕಾನ್ ಹೋ, ಏಕ ಕಾನ್ ಕಲಾ ಹೋ. यहाँ पर उल्टे बात है, दहेज कौन देता है? जो कन्या शादी मैंने जो शादी होता है दहेज कौन देता है? कन्या के पिता दहेज देता है कन्या के साथ, कुछ अच्छे गहने साड़ी और जो कुछ देता है, साथ में कुछ दासियां भी जाते हैं. ये राजा है लेकिन ये इनको इच्छा नहीं था कि उनको अपने पुत्र देने के लिए, किनको है ऋषिक मुनि को जो चाहते थे उनकी कन्या को शादी करने के लिए. जैसे पहले भी एक ऐसा व्यक्ति मथुरा में रहते थे, वो भी जमुना जल में तपस्या करते थे वृंदावन में, वो सौभरी मुनि, सौभरी मुनि का आश्रम आज भी है. सौभरी मुनि के सौभरी मुनि जमुना के जल के अंदर डूब कर वहां तपस्या करते थे, मछलियों के बीच में बैठकर तपस्या करते थे. गरुड़ जी आता था, गरुड़ जी आते थे मछली खाने, और कई हजार साल तपस्या करते, लेकिन हटा तो उसके मन में देखे मैंने गरुड़ जी के प्रति अपराध किया, क्योंकि गरुड़ जी मछली पकड़ के खाते थे, उसको ममता हो गया था मछलियों के परिवार में. तो गरुड़ जी को मना किया, इधर आकर मछली मत पकड़ो, यहां से खाना नहीं. गरुड़ जी क्यों सुने, भगवान विष्णु की वाहन है तो उनके आहार है तो खाते थे. लेकिन एक बार गुरुड़ जी ने आए और एक मछलियों की जो सरदार था सबसे बड़ा मछली को उठाए, तो बड़ा गुस्सा हो गया. कौन? सौभरी मुनि गुस्सा होकर कहे कि तुम चाहे विष्णु की वाहन क्यों न हो, लेकिन यदि दोबारा तुम्हें यहां पर आकर मछली पकड़ेगा तेरा मृत्यु हो जाएगा. गुरुड़ जी वैसे चाहते थे अभी सबको टाल सकते थे, लेकिन क्योंकि वो महान भक्त तथा भगवान विष्णु के ही महान था, इनको कैसे मृत्यु हो सकता है. लेकिन सम्मान देने के लिए ऋषि को ब्राह्मण को तो उन्होंने छोड़ दिया था स्थान आने के लिए. लेकिन गरुड़ के चरण में जो अपराध किए उसके परिणाम भोगना पड़ा किनको? सौभरी मुनि को. तो मछलियों के ऊपर ममता हो गया था और मछलियों के बीच में देखी कि एक जो संभोग देखकर, जो पुरुष मछली और मादा मछली दोनों में संभोग देखकर संभोग करते मछली देखकर उनके मन में भी इच्छा प्रकट हो गया. वैष्णव अपराध का ये सबसे पहला, सबसे पहला जब कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है तो अपराध करने पर तुरंत संसार को भोगने की इच्छा प्रकट हो जाएगी. तो वर्मनी कितने दिनों से तपस्या करते थे पानी के अंदर, कभी कभी इनकी कई हजार साल बीत गया था, कुछ नहीं हो रहा था. लेकिन आज अपराध के गुरुड़ जी की जैसे महान वैष्णव को साधारण समझ कर उनको अभिशाप देना शुरू कर दी. वैष्णव कभी किसी को अभिशाप नहीं देते हैं, वैष्णव की कभी सहनशील है. सुनागति सुनी के न करो रोपी सही सुना, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि. गुरुड़ जी सहन करते वो अभिशाप दिए, गुरुड़ जी कुछ प्रतिकार नहीं किया, लेकिन वो चुपचाप चले गए. लेकिन उसकी प्रतिक्रिया इनको भोगना पड़ा. अब उन्होंने भी ऐसा ही पानी के अंदर से निकले और आए चले सीधे कहां, मथुरा के राजा ये मानधाता. अब राजा मानधाता के पास में गए, उनकी कितनी पुत्री थे, 50 पुत्र थे, और बस उनके राजा को कहे कि मुझे पुत्री दे दो शादी करने के लिए, मैं भी गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूं, दे दो. तो राजा ने भी इसी प्रकार जैसे यहां पर ये कौन महाराज नहीं महाराज ऋषिक नहीं ऋषिक तो ऋषि है महाराज गाजी ने समझ गए कि ये जो ऋषिक मुनि आए सामने ये एक ब्राह्मण है ऋषि ऋषि है कई जो दिनों से तपस्या करने के प्रांत शरीर से वो अस्थि कंकाल सार हो जाता है हड्डी सब दिखाई पड़ता है गाल घुस जाता है दाढ़ी बाल ये सब जटा जुट ये एक राजकन्या को शादी करने के लायक नहीं होता है वहां पर भी इस प्रकार वो महाराज मानधा ने भी सोचा था कि ये जो सोभरी मुनि पानी के अंदर हजार कई हजार साल निकल कर आए तो शरीर में पूरा ऐसे पूरे शरीर सिकुड़ गया था चमड़े से और तो हड्डी देख रहा था गाल घुस गए थे दाढ़ी बाल और ये सोचे कि राजकन्या को शादी करेंगे तो वहां पर भी वो राजा ने वैसे कहा ठीक है महाराज क्यों जानते थे कि महान योगी है वो तो अभिशाप देकर सर्वनाश कर देगा मेरा ये भी भय रहता है ब्राह्मणों के प्रति क्षेत्रीय राजाओं की भय रहता है कि अभिशाप न दे अभिशाप देगा तो सर्वस्व चलो सर्वनाश कर सकते अभिशाप दे सकते योग शक्ति की बात तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारे 50 लड़की हैं आप अंदर में जाइए यदि कोई लड़की आपको स्वेच्छा से आपको शादी कर लेगा तो सही है मैंने कुछ मना नहीं करता लेकिन क्या कर सकता हूँ वो आपने अपना इच्छा है स्वेच्छा से शादी करने का पति को चुनने का तो आप जाइए अंदर में जो आपको चुन लेगा लेकिन उनकी भाव को समझ गए थे कौन तो भरी मुनि राजा क्या कहना चाहता था उनकी लड़की को शादी करने के लायक में नहीं हूँ सोच रहा अर्थात तो उसके मनोभाव को सोचकर उन्होंने योग शक्ति में ऐसा ही सुंदर पुरुष का रूप बनाए जिसको देखकर वो अंदर में जो प्रवेश किए तो सारे 50 की 50 लड़की उनको शादी करने के लिए तैयार हो गए झगड़ में लगे वो वापस में लड़ाई हो गया कन्याओं की वो बोला कि नहीं ये पुरुष मेरे के लिए है मेरे पति मेरे लायक पति है मैं इसके साथ शादी करूंगा दूसरे बोले नहीं तुम हटो तो परस्पर में झगड़ गए सारे 50 को 50 उनको शादी कर लिए पति रूपये परम कर क्योंकि उनके पास में विशेष शक्ति होता है लेकिन उसी प्रकार यहां पर ऋषि के मुनि जब आकर उनके सामने उनको महाराज गाधी के सामने अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी किनकी महाराज गाधी के तस्य सत्यवती कन्याम क्या कन्या का नाम क्या था सत्यवती और सत्यवती उसको रुचि का अजात दीजा ब्राह्मण रुचि का रुचि के मुनि ने आकर कहे कि तुम्हारे जो कन्या है सत्यवती मुझे दान कर दो कन्या दान किया जाता है कन्या को दान करते हैं पितृ दत्त कन्या है यदि पिताजी स्वेच्छा से किसी कन्या या को दान कर देता है राज दत्त भूमि राजा यदि स्वेच्छा से किसको जमीन देता है तो कहते कि वो जो दान ग्रहण करता है के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य की बात होता है कन्या को पिताजी अपने स्वेच्छा से दान करना चाहिए और राजा स्वेच्छा से किसी प्रजा को भूमि देना चाहिए उसे ऋषि के मुनि ने जाकर मांगे दान दो तुम्हारा जो कन्या है मुझे दो क्योंकि मेरे मन में अभी इच्छा प्रकट हुई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए ऐसी गृहस्थ ऐसे ही इच्छा प्रकट हो जाती भोगने की संसार को भोगने का इच्छा जैसे सोगोरी मुनि के मन में भी प्रकट हुआ जब कभी हम किसी अपराध करते हैं नहीं तो जब ब्रह्मचर्य जीवन बिताता है ब्रह्मचर्य धारण करके बाद कई सालों से रहा है अनिष्ठिक ब्रह्मचारी है तो उसके मन में कैसे पैदा होता है क्योंकि हम देखते हैं कि 50 पूरे लॉन्ग टाइम चले जाता है और 50 उम्र भी हो जाता है 50-55 60 साल में भी फिर व्यक्ति शादी कर लेता है अपना संग दोष तथा कहीं ना कहीं मैंने किसी के चरण में अपराध होता है हम जो किसी गृहस्थों को चर्चा करते हैं निंदा करते हैं तो वो गृहस्थाश्रम है अपने पत्नी के साथ बच्चों के साथ देखकर हमारे मन में कुछ अहंकार आ जाता है उनको निंदा करना शुरू करते हैं उनकी चर्चा करना शुरू करते ब्रह्मचारी के काम नहीं गृहस्थों की चर्चा करें गृहस्थ अपने पता कैसे रहता है घर में पत्नियों के साथ मन में बच्चों के साथ में उसकी तरफ देखना बा उनकी चर्चा करना इसका काम नहीं है कभी कभी ब्रह्मचारी लोग निंदा करते हैं किनका गृहस्थों की गृहस्थाश्रम गृहस्थ को निंदा करने लगे क्या है और उनको कुछ भी मन में से बुरे भावना लाते उनको गृहस्थ देखने नहीं हम तो उनकी तरफ देखेंगे नहीं चले दूसरे तरफ बात तो তোমাকে অবশ্যই ব্রহ্মচারীকে গ্রহস্থ দাদা মিলযোগ করার শাস্ত্র নির্দেশন আধার পর বচনা চাই লেকিন সাথ সাথ বৈষ্ণব সদাচার আধার পর ব্যবহার সহ রাখে বাতচিত করার কোথায় প্রণাম করেন বৈষ্ণব প্রণাম করার আপনি ভি প্রণাম করার তো এস প্রকার যাব আপনি করতে হ্যাঁ এই বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে যা হয় তবে ফের আদি করার ইচ্ছা প্রকট হয়ে যাতে গ্রস্থ জীবন আমি ভি গ্রহস্থ মে প্রবেশ করার দেখতে হ্যাঁ কি এই গ্রহস্থ লোক যে কতনে আনন্দ মে রে সোচনে ফের লাগে কতনে আনন্দ মে বহু সুন্দর ফ্ল্যাট হ্যাঁ পত্নী হ্যাঁ বচ্চে হ্যাঁ ব্যাংক ব্যালান্স হ্যাঁ কে ভি চাহতে তো কার মে আপনি ঘুমতে হ্যাঁ কাহিনী চলে যাতে হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা হোক আর গান্ধী জয়ন্তী জেসে কে ভি ঘুমে তো এ সব দেখতে দেখতে মন মে ইচ্ছা প্রকট যাব ইনকি নিন্দা করার চাহতে উনকে কমিয়া দেখনা চাহতে ফের আস্তে আস্তে ওই ব্যক্তি যে গ্রহস্থ নিন্দা করতে ওই গ্রহস্থ বনি যা বাত এসলি আমি সতর্ক রাখা চাই কি কিছু কি নিন্দা না করেন হ্যাঁ নিন্দা কাম অপরাধ সবসে ভালা অপরাধ হ্যাঁ এই কি ভেষ ভেষ পেহনে সে ব্রহ্মচারী ভেষ বা গ্রহস্থ এসে ভেষ কে অনুযায়ী সন্ত কাহা যা এই সন্ন্যাসী ক্ষেত্রে মহাপ্রভু কে কি গোপী ভর্ত কমলয় দাস দাসানু 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 টেন থাউজেন্ড টাইম রিডিউস মোর বৈষ্ণব তো কই হো সকতা হ্যাঁ এসে বর্ণ আশ্রম কি কুছ লেনা দেনা নেই তো এসে জানতে হুয়ে আমি বড়ে দৈন্যতাকে সাথ রাখা চাই নেই তো আমি ভি কবি অপরাধ কর বৈঠেঙ্গে হ্যাঁ কিছু বৈষ্ণব কে চরণ মে ফের আমার ভি এসে গতি হোক ফের সংসার ভোগনে কি ইচ্ছা প্রকট হয়ে যাতা সংসার ভোগনে হ্যাঁ কতনে বড়ে যোগী হোনে সে যোগী যোগ শক্তি কি মাধ্যম সে লাস্টি ডিজায়ার কো কন্ট্রোল নেই কর সকতা হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়ে যে শত্রু হ্যাঁ কাল জেসে আমি চর্চা কে ইয়ে যে শত্রু হই কিছু কি বশ নেই হতা বিশ্বামিত্র ইত্যাদি বড়ে যোগী হ্যাঁ ওই মহান যোগী থা লেকিন মানে কাহা কি থোড়া ঘুঙ্গুর শব্দ সে হি বস হ্যাঁ বিতড়িত হোক ফের মন মে সেক্স ডিজায়ার ফায়দা হোক তো এসলি বড়ে সতর্কতা সে রাখা চাই বৈষ্ণব কিছু ভি বর্ণ আশ্রম মে রহকর ভি ভগবান কে মহান ভক্ত পরমহংস বন সকতা হ্যাঁ হ্যাঁ যে ভক্তিধর ঠাকুর নে গৃহস্থ আশ্রমে রহতে হুয়ে গ্রহ কি প্রকার জীবন কো নিভায় কেসে হি উনকি পুত্র কোন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মনষ্টিক ব্রহ্মচারী সে ও ভি পরমহংস থে ঠাকুর ভি পরমহংস থে কই আশঙ্কা হয়েছে কই ব্রহ্মচারী আশ্রমে রহকর ভি পরমহংস স্থিতি কো প্রাপ্ত কর সকতে কই গৃহস্থ আশ্রমে রহকর ভি স্থিতি কো আ সকতা হ্যায় লেকিন যাব আমি নিন্দা করার শুরু করেন দূসরে এক দূসরে কাজ এক দূসরে তো শ্রেষ্ঠ মানে গা তো ফের আমি বৈষ্ণব রাত করেন তো ভজন মে মন নেই লগ সকতা হ্যাঁ ফের মন ইধর উধর যায় হ্যাঁ তো এসলে সভি আশ্রম আচ্ছা হ্যাঁ লেকিন আশ্রম মে রহকর আমার যে অসলি কর্তব্য হ্যাঁ ভগবান কি ভক্তি করার এ আশ্রম কার্থ কে আমি কি কহতে ব্রহ্মচারী আশ্রম গৃহস্থ আশ্রম বানপ্রস্থ আশ্রম আর সন্ন্যাস আশ্রম হ্যাঁ কিবা দীপ কিবা ন্যাসী শূদ্র কে না নয় যেউ কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা সেই গুরু হয় এখানে মহাপ্রভু কি নির্দেশনে কই ভি কিছু মহাপ্রভু কৃষ্ণ কথা কু শুনলে যে বলনে কে অধিকার কিছু মানা রামানন্দ হ্যাঁ শূদ্র থে গ্রহস্থ থে লেকিন মহাপ্রভু নে উনি কি মুখ সে কৃষ্ণ কথা কো শ্রবণ কিয়া আর দূসরে ভি উনকে যে মুখ্য সহচর থে দূসরে থে বৈরাগী কোন সরুদামদর গোস্বামী মহান বৈরাগী শিরোমণি হ্যাঁ ও ভি সন্ন্যাসী সন্ন্যাস এক প্রকার সন্ন্যাস লিয়ে থে বনারস মে লেকিন ক্ষেত্র সন্ন্যাসী রূপ মে রহে পুরী মে ওর উনকে সেক্রেটারি থে ইয়ে ভি কৃষ্ণ কথা ইন ভি কৃষ্ণ কে সম্বন্ধিত গীতোঁ কো গাতে থে বহু সুন্দর গীত গাকর চৈতন্য মহাপ্রভু শোনাতে থে আর দূসরে কৃষ্ণ কথা শোনাতে থে কোন রায় রামানন্দ হ্যাঁ দোনো রাতে থে রামানন্দর কৃষ্ণ কথা স্বরূপের গান বিরহ বেদনাতে প্রভু রাখে পরা রামানন্দ রায় কে কৃষ্ণ কথা আর স্বরূপ গান দামোদর গোস্বামী কি কৃষ্ণ কে গান কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ সম্বন্ধিত যে গান হয় জয়দেব গোস্বামী কে গীত গোবিন্দ সে বা চন্ডীদাস বিদ্যাপতি কে বিদ্যাবলী সে হ্যাঁ या कृष्ण कर्णामृत से उन्होंने गाकर सुंदर गीत गाकर महाप्रभु सुनाते थे और दूसरे कृष्ण कथा कहते थे। लेकिन मुख्य बात है कि हम परस्पर मिलजुल के ही भगवान की सेवा में रहें। मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए समस्त इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाना है। इसलिए प्रभुपाद ने संस्था बनाया इस क्रम में, इससे सभी मिलजुल कर रह सकते, पूरे विश्व इसमें निवास कर सकता है। ऐसा ही संस्था बनाया गया जिसमें पूरे विश्व निवास कर सकता है। लेकिन प्रत्येक आश्रम में कुछ नियम है, जो जिस आश्रम में रहता तो उन नियमों को अवश्य भी पालन करें, उन नियम का आधार पर चलें। सदगुरु के निर्देशन में साधु शास्त्र गुरु, जो कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए तीन आवश्यकता है, कौन सा? साधु शास्त्र गुरु, तीनों को बालांस रख के चले आगे हैं। कैसे चलना है? हम ब्रह्मचारी है, हमारे लिए क्या नियम है? शास्त्र कहता है क्या नियम है ब्रह्मचारियों के लिए? कैसे रहना, कैसे उनके चाल चलन व उनकी गतिविधि कैसे शास्त्र में वर्णन की गई है? ब्रह्मचारी है तो फिर उनका आठ प्रकार के नियम पालन करना है, स्त्रियों से कैसे दूर रहना है। तो माता को भी जानना चाहिए कि ब्रह्मचारी है तो उसको उसकी कोई अच्छा ब्रह्मचर्य प्रकृति में, यदि कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, कोई अच्छी वरिष्ठ माता जी है तो अच्छे ब्रह्मचर्य देखते तो उसको खुश होता है, वो प्रशंसा करता है, अच्छे बोलते हैं अच्छे ब्रह्मचर्य, वो जानते हुए उससे भी दूर रहता है, उसके साथ ज्यादा मिलजुल करना व उनसे बातचीत। ब्रह्मचर्य के काम है माता माताओं से बात ना करें, ज्यादा बात ना करें, दूर रहे। लेकिन मैंने कृष्णदास कविराज को समझ कहते कि यदि यदि प्रीति रखी बारे चाहो गौरांग रसने छोटा हरिदास कथा थके जेन मने। एक वैरागी व्यक्ति के लिए महाप्रभु ने कितने स्ट्रिक्ट है, उसको ध्यान में सब समय चिंतन करो, उसको सोचो छोटा हरिदास के कथा है। चैतन्य महाप्रभु लीला में दो हरिदास आते, एक ब्रह्म हरिदास रामाचार्य हरिदास ठाकुर और दूसरा छोटा हरिदास। छोटा हरिदास भी क्षेत्र सन्यासी थे, रहते थे महाप्रभु के पास में, आते थे शाम को कुछ गीत गाकर सुनाते थे कुछ भी, वो भी बहुत बहुत अच्छा गायक थे, गाने में बड़े सुनीपूर्ण थे, और आते थे शाम को कुछ गाकर भी महाप्रभु सुनाते थे, उनकी सेवा था। लेकिन एक बार वो पुरी में और एक वैष्णव रहते थे, उनके नाम था भगवान आचार्य, वो भी महान वैष्णव, कृष्ण लीला में वो द्वादश गोपाल में से एक गोपाल माने जाते, साक्षर के भक्त थे और नित्य सिद्ध पार्षद थे गौरांग महाप्रभु के। इसलिए महाप्रभु को कभी कभी वो अपने घर में खाने के लिए प्रसाद के लिए बुलाते थे, स्वयं कुकिंग करके बुलाते थे, महाप्रभु उनके निमंत्रण रक्षा करके जाते थे उनके घर में खाने के लिए। तो एक बार भगवान आचार्य इन्वाइट किया चैतन्य महाप्रभु को, और लेकिन छोटा हरिदास को बुलाया था थोड़ा आशीष करने के लिए, कुकिंग में थोड़ा मदद करने के लिए, छोटा हरिदास गए उनको मदद करने। लेकिन इन्होंने देखा कि अपने घर में अच्छी क्वालिटी के चावल नहीं है, और अच्छी क्वालिटी के चावल कहाँ पर है? महाप्रभु की अनन्य भक्त जब और एक भक्तिमती माता जी थी, उनके नाम थी माधवी दास, पूरी में गौरांग महाप्रभु की जितने भी भक्त रहते हैं वो उनमें थ्री एंड हाफ अंतरंग माने जाते थे, रामदर गोस्वामी, राय रामानंद, सिक्खी माइती के बहन माधवी दास। माधवी दास भी बहुत उन्नत भक्तिमती स्त्री थी, वैष्णवी थी, इसकी पूर्व लीला में कृष्ण लीला में वो राधारण की दासी थी, अरविंद बहुत उन्नति उन्न बहुत नित्य सिद्ध भक्तिमती वैष्णवी थी, और उन्होंने अच्छी क्वालिटी की चावल बनाकर अपने घर में रखी, बहुत एक क्वालिटी के चावल, भगवान आचार्य को पता था। तो उन्होंने इनको बोले कि हरिदास तुम जाकर माधवी दासी से एक मान चावल ले आओ, मान मनी वो पकने के लिए होता है, ऐसे जबा होता है उसमें 900 ग्राम लघु होगा था, पूरी में इसको मान नहीं, उड़िया में इसको मान कहते हैं, किलो होता तो ये 1000 ग्राम होता है, वो 900 ग्राम लगभग होता है, तो मान एक मान चावल ले आओ महाप्रभु के लिए, उन्हें कुकिंग करके बहुत अच्छे और मैं खिलाऊंगे आज, मेरी इच्छा है। तो उन्होंने गए मांगने के लिए, गए छोटा हरिदास कहने पर, जाकर माधवी दास बड़े प्रसन्न हुई जब कि उसकी जो चावल है महाप्रभु के लिए रंधन किया जाएगा, महाप्रभु की सेवा में लगेगा। तो उन्होंने दिए, एक मान चावल दिए, लेकिन चावल देने के बाद थोड़ा सा वो खड़ा होकर, एकांत में कोई नहीं थे, माधवीदास जी थे और वो थे छोटा विदास, दोनों थोड़ा कुछ बातचीत दुख सुख कुछ बातचीत हुए और उसके बाद फिर वो वापस आए, चावल दे दी भगवान आचार्य को। समय पर कुकिंग हो गया और भगवान आचार्य ने कुकिंग करके अन्य अन्य प्रकार के व्यंजन, सब प्रकार के सब्जियां, दाल, सब बहुत प्रकार के बनाए थे और सभी केले के पत्ते के ऊपर रखकर तुलसी मंजरी डाल के बड़ा भोग लगाए, लगाकर रख के रेडी रखे थे उनके लिए। महाप्रभु ठीक समय पर स्नान करके पधारे, समुद्र स्नान करके वहां पर दोपहर के समय पधारे और महाप्रभु ने पहले इतने सुंदर प्रसाद को देखकर बहुत प्रशंसा की, तुम धन्य हो भगवान आचार्य, आज तुम ऐसे ही अपना व्यंजन भगवत कृष्ण को जगन्नाथ को अर्पण किया, तुम बहुत भाग्यवान हो। लेकिन ये अर्ण से इतनी सुगंध, सुगंधित अर्ण है, इतनी सुंदर अर्ण देखने में है, लोभ उत्पन्न हो रहा है अर्ण प्रसाद के प्रति, लेकिन इसी सुंदर अर्ण प्रसाद तुम भगवान को अर्पण किए, तुम धन्य धन्य हो, लेकिन लाया कहां से इतनी सुंदर अर्ण, कहां से लाया, तुम्हारे घर में था ना और कहीं से? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको माधवीदास से मंगवाया, तो माधवीदास से तो कहीं कौन लाया जाकर, अभी पटारीदास सोचता कि मेरे नाम जब सुने के महाप्रभु मैं जाके लाया तो खुश होंगे, तो कह के छोटा हरिदास को भेजा था वही लेके आया। महाप्रभु ने ये नाम सुनते कि छोटा हरिदास जाकर लेके आया तो गंभीर हो गए, कुछ बोले नहीं, चुप शांत पर गंभीर रूप में उसके बाद पर बातचीत नहीं की थी, प्रसाद को ग्रहण किए, ग्रहण करके सीधे हाथ धोकर सीधे डायरेक्ट चले गए अपने कुटी में, गंभीरा में गए और गोविंद को कहे आज से ये छोटा हरिदास के लिए मेरे गेट बंद है, दर्जा बंद है, यहां नहीं छोड़ना उसको अंदर, मेरे साथ इसका कोई संपर्क आज से नहीं है। कुछ कारण भी बताया नहीं, गंभीर थे, उनको पूछने के लिए भी कोई इसकी हिम्मत नहीं हुआ। महाप्रभु थे तो शाम के समय हर दिन का ड्यूटी जैसे लगाता था, छोटा हरिदास आज भी आया और आज भी आया तो कैसे, गोविंद ने कहा कि अंदर जाने के आपको अधिकार ने मना है, महाप्रभु ने मना किया आप अंदर अंदर नहीं जाता। बोले क्या कारण, क्या न कारण क्या पता ही नहीं, पता ही नहीं, हमें पूछने के लिए हमारी हिम्मत नहीं है, बहुत गंभीर थे, मैंने नहीं पूछा, लेकिन आपको नहीं जा सकते अंदर, मना है। तो छोटा हरिदास बड़ा दुखाने लगे, तो सर्व अंदर गोस्वामी को पूछे जाकर, पूछे बोले कि नहीं तो वापस है, लेकिन प्रत्येक दूसरा दिन गया फिर मना है, तीसरे दिन गया मना है, नहीं अंदर नहीं जा सकते हो। सर्व अंदर गोस्वामी जाकर पूछे महाप्रभु को क्या हुआ, छोटा हरिदास को क्यों मना है, तो वो खाना भी नहीं खा रहा है, उपवास है, बहुत रो रहा है, तो उसको मना क्यों आप किए आपके पास आने के लिए। महाप्रभु ने कुछ बोले नहीं, केवल कहे कि बैरागी हैया करे स्त्री संभाषण देखीते न पारी आमी सहार बदन। बैरागी है, बैरागी वैराग्य आश्रम में है, लेकिन एकांत में जाकर स्त्री के साथ बातचीत करता है, हम इसके मुख भी नहीं देख सकता, सब कुछ नहीं, फिर शांत हो गए। कभी सरोज ने थोड़ा हास लगे, कोई वो ऐसे मिस्टेक कर लिया, कभी एक इस टाइम माफ कर देना चाहिए, महाप्रभु के नहीं माफी नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति की माफी नहीं है कि महाप्रभु अंतर से वो एकांत में एक स्त्री से बातचीत कर रहा था, क्या उसकी माइंड में था, क्या था वो महाप्रभु जानते, मना कर दे नहीं किस बात में। अन्य पार्षद लोग राय रावण भी और जितने भी पार्षद थे यहां तक के सभी महाप्रभु के जितने भी पार्षद सब लोग आते एक एक करके रिक्वेस्ट के सभी लोग, लेकिन महाप्रभु किसी के रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया, बोले ऐसे ही माता से फिर जो बैरागी आश्रम धारण करके फिर भी स्त्रियों से बातचीत करता उसको मैं कभी उसके मुख नहीं देख सकता। सभी लोग सोचे कि अच्छा परमानंदपुरी को भेजते हैं, परमानंदपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, गौरांग महाप्रभु परमानंदपुरी को अपने गुरु के सब मानते थे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य अपने उनके महाप्रभु की गुरु ईश्वरपुरी उनकी गॉड ब्रदर होते थे, इसलिए उद्धव के अवतार थे परमानंदपुरी, महाप्रभु के साथ नहीं रहते थे, पूर्व लीला में वो उद्धव थे, तो इसलिए महाप्रभु बड़े उनको सम्मान करते थे। और सभी भक्त मिलकर कहे कि आप थोड़ा जाकर बोलिए भक्त को, मैंने रो रहा है, सात दिन बीत गया अभी तक कुछ खाता नहीं है पीता नहीं, हर दिन रात रोता है, महाप्रभु इसको धारण किए, जाने के लिए मना उनके पास में, आप कुछ कीजिए। परमानंदपुरी आए, परमानंदपुरी आकर महाप्रभु उनको देखते ही तुरंत प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम, अपने गुरु ज्ञान से इनको प्रणाम किए और उनका आसन दिए बैठने के लिए। कैसे आगमन हुआ, मैं क्या सेवा आपकी कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या आदेश है, महाप्रभु पूछे। तो उन्होंने कहे कि ये सारे सभी भक्त मिलकर मुझे आपके पास में भेजा है, जितने भी वैष्णव पुरी में सभी वैष्णव मिलकर मुझे आपके पास भेजे हैं, वो छोटा हरिदास का जो केस है आप कृपा करके इस टाइम इसको क्षमा कर दीजिए, बेचारा बहुत पश्चाताप कर रहा है, बहुत रो रहा है, खाना पीना भी छोड़ दिया है। तो महाप्रभु ने गोविंद को बोले, गोविंद मेरा कमंडोलू लोटा दंड कमंडोल पकड़ो और हमारे लिए अरे जागा रहने के लायक नहीं, सत्य वलार न कुछ बोले है, हम आप कहेंगे परमा आप यहीं पर रहिए, पूरी गोसाई आप भक्तों के साथ में यहीं रहिए, मैं चलता हूँ कहाँ अलामनाथ। ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, तुरंत ही हाथ पकड़ के महाप्रभु बड़े शब्द में बोले, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये भक्तों लोग मुझे भेजा था कि बोले आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आप स्वतंत्र भगवान, आपकी इच्छा जो आप वो कर सकते हैं, मैं तो केवल सलाह देने के लिए आया था, सारे भक्त लोग जो बोले, लेकिन आप ही रहिए। बहुत आश्चर्य में महाप्रभु ने फिर उनको पकड़ के नहीं सर सर्वानंदपुरी पकड़ के फिर महाप्रभु अपने आसन पर बैठा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं थी नहीं, किसी की बात महाप्रभु नहीं सुनी है। बैरागी हैया करे श्री संभाषण देखिते नवारिया नी सहार बदन, मैं मुख नहीं देख सकता। जो ब्रह्मचारी सन्यासी है उनको कितनी कठिन कड़ा है, किनके महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, लेकिन माताएं जाते थे तो इनको कैसे प्रणाम करते थे, कितने दूर से, लगभग 20 हाथ दूर से, 20 हाथ दूर से माता बात करता तो दूसरी बात है। गौरांग महाप्रभु में स्त्री शब्द भी उच्चारण नहीं करते थे, प्रकृति प्रकृति है, प्रकृति दर्शन प्रकृति, स्त्री के जब बात कोई शब्द तो कहते प्रकृति, स्त्री भी उच्चारण नहीं करते, वो उच्चारण नहीं करते। आप दूर से 20 हाथ दूर से उनको प्रणाम करना, बातचीत करना तो दूर की बात है, इतने महाप्रभु कठोर माने नियम था। यदि कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, कितने कठोर रणनीतिक ब्रह्मचारी जो है, जो व्रत ले रखा है कि जीवन में वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेगा, भगवान की भक्ति में संपूर्ण जीवन को समर्पण करेगा, काय और मनो वाक्य में भगवत सेवा में संपूर्ण ये जीवन को उत्सर्ग कर देगा। वो श्लोक महाप्रभु ने कहते थे, निष्किंचनस्य भगवत भजन मुखस्य पारंपरम जिगीमिष भवसागरस्य संदर्शनम विजयीनाम अथ जोशिकाम च हा हंत हंत विषभक्षण अभी असाधु 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 साधु नहीं है। एक बार घर बार सब छोड़ दिया है, अब सब छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए सब छोड़ के आ गया, ऐसे ही निष्किंचन भजन करने के लिए जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ त्याग दिया था और दोबारा फिर सुंदर सनम विषय विषय व्यक्ति के संग किया और जोशीता श्री के संग करने लगा, तो उस व्यक्ति को तो जहर खाकर शरीर त्याग देना था, वो साधु नहीं है, वो असाधु है। ये महाप्रभु के नियम है ब्रह्मचारियों के प्रति, ब्रह्मचारी को बड़ा कठिन था, विशेष रूप में जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहता सन्यासी आश्रम में बड़े कड़क नियम है उनके लिए लेकिन गृहस्थ जो है गृहस्थों के लिए भी नियम है महाप्रभु के, जो जो गृहस्थ थे सर्व मोटा जाते गृहस्थ थे, रामानंद राय गृहस्थ थे, महान वैष्णव वो भी महाप्रभु के जो पार्षद है तो, लेकिन महाप्रभु उनके लिए कुछ अलग नियम रखे, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी ये नहीं कि हम स्त्री के साथ संग कभी भी करें, मैथुन के लिए केवल मैथुन आनंद लेने के लिए स्त्री संभव नहीं है। गृहस्थ आश्रम केवल एक कृष्ण भावना भावी संतान को जन्म देने के लिए है, गर्भाधान संस्कार के सारे नियम को ठीक ठीक से पालन करना, उसने बता दिया कैसे गर्भाधान संस्कार होता है, तेरा मेरा काजी क्या करेगा, तेरा मेरा राजी क्या करेगा, काजी जब स्कूल चल रहा ना वो वैदिक संस्कृति नहीं है, पितृदत्त कन्या, पिताजी दान करना चाहिए कन्या को, तो ऋषि मुनि की इच्छा हुआ तो आकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करके आपका कन्या मुझे दान कीजिए, ये नहीं कि वो गुप्त भाव से इधर से उधर से इसको पढ़ाने के लिए कोशिश करने लगे, किसको, कन्या को, ये जोगी है उनके पास में कई सिद्धियां है, हैं, कोई सिद्धियां है, कोई जो जोगी होते हैं उनको सारी सिद्धियां रहती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब जानते, तो चाहते तो किसी तंत्र मंत्र सिद्धि के माध्यम से किसी कन्या को भी आयत कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, वो आए अपने उनके पिताजी के पास में प्रार्थना कर रहे, कृपा करके आपकी जो एक पुत्री है सत्यवती है मुझे दान कीजिए, मैं इसको अपने पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, ये रीति है, कन्या को स्वेच्छा से इनके पिताजी माता जी दान करें, किसी योग्य पात्र देखकर उसको दान दें, पितृदत्त कन्या, इसलिए ये नियम नहीं चलना चाहिए, तेरा मेरा राज्य क्या करेगा, यही से ब्रेक हो गया नियम, प्रारंभ से वो देखने लगे दोनों दो दोनों को परस्पर केवल डिजाइन में एक दूसरे में आकर्षित होते हैं, आकर्षित होने के बाद तो वो तो फिर लव लेटर लिखेंगे, ये बोलेगा तुम चंद्रमुख है, तुम चंद्रमुखी है, बहुत कुछ सुंदर पत्र लिखेगा, कैसे कल्पना जल्पना चलेगा, और पहले तो चंद्रमुखी, शादी करने के बाद फिर वही सूर्यमुखी हो जाती है, अब एक दो बच्चे होने के बाद फिर ज्वालामुखी बन जाती है, फिर झगड़े चलता है, कितना डिमांड है उसके, आएगी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो बेचारा परिश्रम कर करके धन कमाएगा लाएगा, हैं, श्री प्रभुपाद ने कहते थे कि ये जो है स्त्री और धन दोनों ये कैसे हैं, दिल्ली की लड्डू जैसे हैं, दिल्ली की लड्डू क्या, मैं तो पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद कहते कि दिल्ली की लड्डू जो आया है वो पछताता, जो नहीं खाया वो भी पछताता, लेक्चर में कहते मैं सुना कि ये और कहीं सुना, लेकिन प्रभुपाद कहते लेक्चर में कहते प्रभुपाद दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताता, जो नहीं खाया वो भी पछताता, स्त्री और धन जिसके पास में है वो भी बेचारा दुखी है, शादी कर लिया था और कितनी डिमांड स्त्री की बढ़ रहा है तो है, और उस डिमांड को पूर्ण नहीं कर पा रहा, फिर वो ज्वालामुखी बन रही है, और यहाँ से जो नहीं है वो सोच रहा है कि मेरे को यदि मिल जाएगा धन और स्त्री मिल जाएगा मैं बड़ा सुखी बन जाऊंगा, भूल जाते हैं साइन बोर्ड, भगवान ने जिन्होंने सृष्टि किया इस संसार को, संसार को सृष्टि करने के प्रांत वहां पर एक बोर्ड लगाया, क्या बोर्ड लगाया, दुखालयम अश्वासतम अनित्यम असुख लोकम, ये बोर्ड देखने भूल जाते हैं हम लोग, संसार में आ गए हमारा कर्म के अनुजाई आ गए इसी मनुष्य शरीर में किसी भी शरीर लेकर, लेकिन बोर्ड देखना भूल जाते हैं, संसार में प्रवेश करने के समय में गेट में ही बोर्ड लगा गया, ये जो संसार है भगवान कहे कि ये जो संसार है जहां पर जा रहे हो आप लोग अंदर में जा रहे हो, इसका स्वभाव क्या देख लो, इसकी नेचर क्या है, इसमें जाकर दुख की आप यदि सुख की खोज करोगे सुख नहीं मिलने वाला, क्या मिलने वाला है, दुख है, दुखालयम, और ये शाश्वत नहीं है, अश्वासत संसार है, भुत्ता भुत्ता परियत है, इसी प्रकार तुमको जो शरीर मिला ये भी शाश्वत नहीं है, इसका भी नष्ट होने वाला, ये भी नष्ट हो जाएगा, तो इसको देखते हुए जानते हुए हम जानना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य प्रकृति में क्या है, जो कैसे इससे निकलना, इसमें जकड़ के रहना के लिए नहीं, इसके अंदर से निकालना कैसे, किसी आश्रम में हम रहते इसे कैसे निकालना, ये हमारा नीति होना चाहिए, कैसे इसका अंदर से निकल जाए, तो इसलिए गृहस्थों के लिए भी आदर सीखना चाहिए, महान आचार्यों से उनको भी महाजन को देखना चाहिए, 12 महाजन है, 12 महाजन से कुछ हम जैसे कहते कि साधारण तो महाजन जनक तस्य पंथ, द्वादश महाजन में से कुछ गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, कुछ वैराग्य आश्रम है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक अभिष्म बलिर बया सकी वयम जमराज कहते शोक, ये 12 महाजन है और इनकी मार्गानुसरण करने के लिए भागवत कहता है, ये भागवत का जानता है, भागवत रहस्य जानते हैं, तो इनको अनुसरण करो भक्ति में आगे बढ़ना है, तो जो गृहस्थ है तो गृहस्थों को फॉलो करेंगे, जो आचार्य में से द्वादश महाजन में से है, शंकर जी है, ब्रह्मा जी शंकर जी के परिवार देखिए, शंकर जी के परिवार कौन है, शंकर जी है, पार्वती है, उनके दो लड़के हैं कार्तिकेय और गणेश, उनकी कितनी विरोधाभास देखिए, शंकर जी के परिवार में, चाहते तो कुछ भी बना सकते के मैंने वो तीनों लोग की मालिक है उनके समान कौन है पाई तो अन्नपूर्णा देवी बात तीनों लोग की सृष्टि स्थिति प्रलय कारिणी कौन दुर्गा देवी सारे माता जय माता जी सबको उनकी प्रार्थना करते हैं मांगते हैं कुछ दो हमको दे दो दसंग देही आनंद देही रूपंग देही सब उन्हीं से मांगते हैं। अब उनके पिता पत्ते जो पति है शंकर जी अब वो क्या नहीं कर सब जाते भोलानाथ के पास में सब मांगने के लिए बस दोनों, लेकिन वो दोनों को भी घर बनाए नहीं, कहाँ रहते वो कहाँ रहते के स्मशान वैष्णव आनंद तथा शंभु है भगवत कहता है वैष्णव आनंद तथा शंभु कहीं रहते बस वृक्ष के नीचे रहते कैलाश लेकिन बस कहीं भी जाते बस कोई घर भी नहीं बनाया। एक बार पार्वती ने बहुत कुछ कहा कि देखो पति देव घर तो मकान तो बनाओ हमारा एक मकान नहीं है पुत्र जो हो गए पुत्रों को लेकर कैसे रहेंगे ऐसे ही वो एकले थे तो भी दो पुत्र हो गए हैं और फैमिली के रखने में थोड़ा थोड़ा घर बार बनाएंगे। शंकर जी बोले ठीक है थोड़ा बनाते बहुत सुंदर घर बनाए एकदम प्योर गोल्ड के घर बन गया हीरा लीलावती मानी के बहुत कुछ हैं उसमें कहने बहुत सुंदर एक घर बना दी बहुत विशाल महल पार्वती को खुश करने के लिए शंकर जी बनाए लेकिन बनाने के बाद कहे कि पार्वती के तो कुछ ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा ब्राह्मण घर प्रतिष्ठा करना ब्राह्मण को दान देना देने से ब्राह्मण वैष्णव की सेवा नहीं करने से नहीं चलेगा। उन्होंने कई ब्राह्मण वैष्णव बुलाया लेकिन मुख्य रूप में गर्गमुनि को इन्वाइट किया। अब गर्गमुनि आए तो लास्ट में जो दक्षिणा है दक्षिणा के रूप में देने के लिए जब वो सत्य कर लिए जो कुछ मांगते मांग लो है तो गर्गमुनि ने फिर क्या मांगा सब कुछ दे दो तुम्हारे पास जो कुछ है सारे दे दो। तो इसे कहते फिर वो उनका वही से फिर घर बनाना स्टॉप हो गया। वो चाहते थे तो और कुछ जो सकते हैं कर सकते लेकिन वो संतरी वाले नहीं ये हमारा भाग्य में नहीं ये बनाना नहीं मैं तुम कहने पर बार बार मैं बना लिया घर लेकिन घर बनाना हमारा ठीक नहीं है हमारा काम क्या है भगवान की भजन करना भजन करते लेकिन उनके भक्त से महल में रहते हैं लेकिन वो जो बुद्धू है जो उनको केवल धन मांगता है लेकिन उनको यदि मांगोगे शुद्ध भक्ति वो भी शुद्ध भक्ति दे सकते हैं। गोपिया लोग में प्रार्थना करते थे कात्यायन की पूजन करते थे और वो उनको दूसरे कुछ मांगते थे कात्यायनी महामाये महाजोगिनी अधीश्वरी नंद गोपोतंग देवी पति में श्रुते मम मेरा पति बना दो इनको हमारा पति बना दो ये नंद गोपो लाला को है। शंकर जी का मैंने ये प्रचेता लोग शंकर जी को प्रसन्न किए मैंने बड़े अपने जो बीच में मिलजुल कर रहे भातृभाव मैंने एक साथ में रहे लेकिन परस्पर में स्नेह भाव था पिताजी के आदेश को पालन करते कोई झगड़ते नहीं शांत भाव से रहते थे और भगवान की धुन में थे। इसको देखकर शंकर जी बड़े कृपाल हो गए हैं वॉलंटियर ले आ गए उनके स्पिरिचुअल मास्टर बन गए और इनको भक्ति सिखाया शुद्ध कृष्ण भक्ति सिखाया रुद्र गीत गाने सिखाया। अब आप वही वैष्णवी वैष्णवानंद यथा शंभु वैष्णवी में भी वही पार्वती महान है तो उन्हीं की कृपा से हम महाप्रसाद खा रहे हैं महाप्रसाद संसार में भी नहीं था उन्हीं की कृपा से आया किनकी कृपा से पार्वती की कृपा से वो दूसरा कहानी है तो किस प्रकार पूरी प्रसाद है महाप्रसाद जगन्नाथ की महाप्रसाद कृष्ण पधार विमला देवी बैठे पीछे है विमला प्रसाद विमला जी का प्रसाद खाकर भक्ति श्री राम सरस्वती ठाकुर के नाम रखे थे उनके पिताजी क्या विमला प्रसाद। इस प्रकार परिवार देखिए उनकी मैं कह रहा था कि उनके परिवार का किसे आकर शंकर जी बैठे तो उनके गले में सांप है उनकी बाहन बैल है पार्वती है तो वो सिंह वाहिनी है बाघ शेर या सिंह बैठे बाहन के उसमें अरे एक दूसरे को खाने दोनों दोनों मुख कर बैठे शंकर जी बैठे शंकर जी के चरण में बैल बैठा और पार्वती के चरण में सिंह बैठे एक दूसरे को खाना खाना खाने का है फिर खा रहा है कोई किसको कोई शत्रुता नहीं बड़े भी प्रभाव से बैठे और इसे उनके पुत्र है एक पुत्र गणेश की बाहन क्या है चूहा शंकर जी गले में सांप खाता है किसको खाता है चूहा को खाता है वो नहीं खा बस खाते हैं सांप है लेकिन इधर दूसरे लड़का का बाहन है कौन मयूर मयूर उसको खाने वाला है किसको सांप को खा रहा हो बड़े शांत भाव से ऐसे परिवार में तो विरुद्धाभास होते हुए भी कितनी शांत में रहते क्योंकि सारे कृष्ण की भक्ति करते हैं अभी कृष्ण भक्त होने के कारण उनकी हिंसा भाव को छोड़ दिए बस अभी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो घर में रहकर आप भी जब इसे वैष्णव बनोगे इस प्रकार है निष्किंचन वैष्णव, घर में रहकर भी निमित्त सोचो, घर आपने मत सोचो, घर आपके नहीं है, घर किसका है? कृष्ण का। कितने दिन रहोगे घर में? मानस देह देह जो किछु उमरो अर्पिलु तोया पदे नंद किशोर। मैं सब कुछ आपके चरण में अर्पण करती हूं, मेरा कुछ नहीं प्रभु, ये सब कुछ आपका है, हैं? ये भावना को आपना ही है। गृहस्थ जीवन में होकर रहने और समझना चाहिए कि घर जो कुछ संपत्ति मुझे मिला है ये सब कृष्ण का ही है, मैं भी कृष्ण की दास हूं, मेरे पत्नी भी कृष्ण की दासी है, ये पुत्र सब जो बच्चे सब है ये भी कृष्ण की सेवक है, हैं? ये सारे जीव आपका है। इसी दृष्टि से देखिए, दैहिक शरीर की दृष्टि से नहीं, ये संबंध केवल ड्रामा पार्टी बना हुआ है। कितने दिन रहोगे संसार में? ड्रामा में एक्टिंग करके जो जो जब जिसका एक्टिंग खत्म हो गया वो जाएगा ऊपर, हैं? जिसकी एक्टिंग खत्म हो गया ऊपर जाएगा, तो कोई रुक सकेगा इसको? नहीं रुकेगा। तो इसलिए मोह को संसार में रहकर भी ये मोह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, हैं? महाराज चित्रकेतु का मोह कट गया जब उनके पुत्र ने कहा कि तुम कौन सा मेरे बाप है, पुत्र 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 रो रहे थे, लेकिन वो उसका छेद हो गया तो बहुत रोने वाला रो रहे थे उस सबको पकड़ के, लेकिन वो नारद जी ने कृपा की थोड़ा उसको जीवित करा दिए, तो कहा कौन सा बाप है, हैं? किस जन्म का बाप है? मैं तो ऐसे कितने जन्म आ गया और कितने बाप को ग्रहण किया हूँ, कितने बाप मेरे हैं, कभी तुम मेरे बाप बना है, कभी मैं भी तुम्हारा बाप था किसी दिन वो जन्म में, शास्त्र समझिए। और इसलिए जो रोल हमको दिया गया है उस रोल को केवल निभाना है, किसी परिवार में रहते हम किसके पिताजी बने माताजी बने, बाप जो हमको जो रोल करना है उसको परफेक्ट करना है, जो कर्तव्य हमारा है उसकी निभाना, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना। तो इसी प्रकार कोई भी आश्रम में हमें तो इसको निभा सकते, सत्य गृहस्थ को गृहस्थ में रहकर गृहस्थ के नियमों को पालन करें, गृहस्थ लोगों को नियम पालन करना वाला कठिन है कलयुग में, है कि नहीं? कितने परसेंट दान कर देना चाहिए इनकम का ग्रस्तों, कितने का दान करना चाहिए? 50%। कोई देने के लिए तैयार है कोई ग्रस्त? जितनी इनकम है उसकी 50% दान कर देना, और दे देने के भगवान की सेवा में ब्राह्मण वैष्णव की सेवा में 50% दे देना, 25% फिर आपके परिवार वर्ग को जो इनकम का 25% में फैमिली चलाना, और 25% इमरजेंसी के लिए रखना, अगर आपने भविष्य में कुछ आपका जो कर्तव्य है तो बैंक बैलेंस डिपोजिट 25% बैंक में रखना, 25% में परिवार को चलाना, 50% कुंज बिहारी के दे देना है, सर वहाँ पर राशिहरी या जो जहाँ पर जुड़े हुए हैं गोपीनाथ कहीं भी दे 50%, ये कह रहे शास्त्र 50% गृहस्थ को दान में देना, कोई देने के लिए तैयार है? कोई तैयार नहीं? प्रभुपाद जी जब थे तो ये कड़क नियम चलाते थे, उन्होंने वृंदावन में प्रेसिडेंट थे उस समय, प्रभुपाद जी के समय में धनंजय प्रभु जान प्रभुपाद जी थे तो प्रेसिडेंट थे, वो 5,000 रुपये लेते थे अपने मेंटेनेंस उस समय का, और गेस्ट हाउस में कमरे लेके रखे थे। प्रभुपाद जी ने आए कहे कि तो सुने कि ये 5,000 रुपया मेंटेनेंस ले रहे हैं और गेस्ट हाउस में कमरा लेके रखे, तो अपने को बोला है, बोले कि आपको कौन बोला पैसा लेने के लिए 5,000 रुपया और कमरा गेस्ट हाउस में? ये नहीं, तुम बांटते हो, आपने को अपने मेंटेन करो और 50% इनकम का मंत्री में दो, है? तो कहीं मैं कहाँ से क्या करूँ पैसे, बड़े इतनी दिन में तो पूरा सेवा में लगाऊ, नहीं गेस्ट हाउस का कमरे पहले छोड़ो, बाहर में कमरा लेके रहो रेंट लेके, वो कहते थे हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो विदेश से मैंने कहाँ से आए थे, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड से आए, तो उनको पता नहीं, इनको प्रभुपाद जी कहे तो उनको बाहर देख रहना पड़ेगा, और कुआं से पानी उठा तक उनकी पत्नी ने बकेट डाल दिया पानी उठाने के लिए, उसको उठाने का जब पता नहीं है, वो रस्सी हाथ से निकल गई और डूब गई ऊपर, उनका अंदर बैठकर रो रही थी उधर, आस पास कोई ब्रजवासी देखे फिर आकर उसको कैसे निकालना है, उसको निकाले हैं रस्सी डाल कांटा डाल के फिर उसको उठाए, लेकिन प्रभुपाद जी का आदेश पालन कर, प्रभुपाद जी पहले बहुत डांटा बोला कि बंद करना पैसा देना, लेकिन बाद में फिर बहुत बोला है, अब प्रेम से इनको सिखाए कैसे बिजनेस करना, उनको बताया इंस्टेंस के बिजनेस कैसे करना, डेटी के लिए गहना कैसे बनाना, कैसे ड्रेस बनाना, और इसको विदेश में कंट्री में कैसे अप्लाई करना, अन्य इस्कॉन मंदिर में देना, और जो इनकम होगा 50% कृष्ण बलराम की सेवा में देना। और वो कहते थे कि हम जब प्रभुपाद के निर्देशों में फॉलो किए हैं हम बड़े खुश में थे, मैंने बड़े हर्षित हो गए, जब से हमको मेंटेनेंस 5000 था हमारे पास में 25000 रहने लगा महीना में इनकम है। इसलिए गृहस्थ को ऐसे ही गुरु की आदेश शास्त्र के निर्देशन है, फॉलो करना बड़ा कठिन है लेकिन ये निर्देश है गृहस्थों के लिए, शास्त्र के निर्देश है। गृहस्थों को महाराज वंती के उपाख्यान नवस्कर में ही आएगा महाराज वंती, और उनके उपाख्यान में देखें गृहस्थ वो कैसे पालन करते थे, लास्ट तक परीक्षा के सारे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, व्रत रखे 40 दिन का बाद में वो व्रत तोड़ने जा हुआ परीक्षा ले रहे थे, वो किस लास्ट तक अंतिम जो अंतिम था कि प्लानी का ग्लास वो भी दे। इस प्रकार गृहस्थ मौके लिए गृहस्थ तीन ही आश्रम को मेंटेन करता है, ये अन्य जो तीन आश्रम किससे चलते हैं, कौन इनको मेंटेन करेगा, गृहस्थ मेंटेन करेगा, कर्मचारी वानप्रस्थ, आजकल वानप्रस्थ कोई नहीं, जंगल में कहाँ जाएंगे, फल मूल कुछ नहीं है कहाँ खा के रहेंगे, ये सभी और सन्यासी ये तीनों ही गृहस्थ के द्वारा मेंटेन किया जाते हैं। प्रभुपाद जी के पिताजी गौरवान दे क्या करते थे, गृहस्थ से आदर्श गृहस्थ जीवन अभी प्रैक्टिकल देख सकते हैं, उन क्या करते थे, कपड़े की दुकान में भी उनके साथ चूहा रहते थे। गृहस्थ का कर्तव्य केवल मनुष्य को नहीं पशु पक्षियों को भी पोषण करना उनका भी कर्तव्य है, पशु पक्षियों को भी खिलाना है, तो चूहा उनके कपड़े की दुकान में रहते थे, और दूसरे व्यवसायी लोग देखकर हैरान हो जाते थे, क्या व्यक्ति है को चूहा को रखता है, चूहा को भगाते नहीं थे, दूसरे लोग कपड़े के पकड़ते कोई 20 दे देता था खाने के साथ मारने के लिए चूहा को पकड़ने के लिए, प्रभुपाद जी पिताजी चूहा के लिए भी रखते थे, बर्तन लाते थे उसमें टुकड़े टुकड़े रोटी करके दूध डाल के आओ 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 अरे चूहा आते थे खाते थे, आज फिर अपने अपने जगह चले जाते, एक भी चूहा उनकी काटते नहीं, दुकान बंद करके दो पर आएंगे तो डेली 8-10 साधु लेकर चलते थे साथ में, अकेले नहीं साधु पता है ये डेली साधु बोलन देगा घर में लेके जाए, तो इसलिए कुछ लोग बैठ जाते थे कि लाल कपड़े वाले हैं और इनको लेके आते थे। उनकी पत्नी रजनी देवी को पता था कि हमारे घर में तो सिर्फ 3-4 लोग हैं खाने वाले, लेकिन डेली 20 लोग का खाना बड़ा पड़ेगा क्योंकि ये लेके आएंगे कुछ लोग इधर है, नहीं तो भूखे रहेंगे, सबको खिला के वो भूखे रह जाएंगे। प्रभुपाद जी गौर मंदिर प्रत्येक दिन लाते, साधु 8-10 बैठते थे, उनको खिलाते थे, और उनके लड़का को लाते थे अभय को, बोले अभय प्रणाम करो सबको है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बाद में जो कॉलेज के जीवन कहते थे, साधु देख देख परेशान हो चुका हमारे घर में, साधु देखना नहीं है, ये डेली प्रणाम करे और बोले सबको प्रणाम करो सब साधु, और कहते थे कि मेरे लड़का को आशीर्वाद दो, जैसे राधारानी का भक्त बन जाए, राधारानी के भक्त बनेगा, भागवत का प्रसार पूरा विश्व में करेगा। तो साधुओं की भोजन कर, साधुओं की सेवा करना एक गृहस्थ का काम है, अकेले खाना नहीं है, तो खाद्य बनाता है तो कृष्ण को अर्पण करें और ब्राह्मण विष्णु को भोजन करा के फिर खाए, नहीं तो ते भुजनते अधम पापा जे पच्यन्ते आत्म कारणार्थ, आपने के लिए कुकिंग करता खाता है, क्या खाता है वो पाप खाता है, यज्ञ वचिष्ट शिव संत मुच्यते सत्य, यज्ञपति भगवान विष्णु को खिलाओ, फिर ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करो, फिर गृहस्थ जीवन सार्थक होगा, आशीर्वाद लो ब्रह्म वैष्णव से है। पिताजी ऐसे आशीर्वाद मांगते मांगते उसमें से कोई ना कोई संत था, प्रभुपाद जी राधारानी के भक्त बने, पूरा दुनिया में भागवत के प्रचार किए, जैसे गृहस्थ की कर्तव्य है गृहस्थ धर्म को कैसे निभाना, ये भी शास्त्र के आधार पर, यदि शास्त्र के आधार पर गृहस्थ जीवन को सही कोई निभाता है तो फिर उसकी जीवन धन्य है। कोई भी आश्रम में रहे ब्रह्मचारी गृहस्थ बालकोस संन्यासी, लेकिन अपने आश्रम के नियम को ठीक से पालन करें है? लेकिन इस युग में बड़ा कठिन है आश्रम के नियम को, प्रत्येक आश्रम में रहकर नियम को पालन करना है बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी युग धर्म तो कम से कम पालन कर सकते, क्या गृह थाको बने थाको सदा हरी बोले डाको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो इसलिए, लेकिन फिर भी अपने आश्रम के नियम को इसको पालन करने के लिए यथासंभव हम प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचारी है, स्त्रियों से दूर रहना, गुरु निर्देशन में सुबह शाम भिक्षा मांगना, ब्रह्मचारी गुरुकुले वचन दान्तो पुरोहितम, गुरु के लिए तो गुरु के आश्रम में रहकर सारी सेवा, संपूर्ण अपने जीवन को समर्पित गुरु की सेवा में करना, गुरु के आदेश उसके जीवन का लक्ष्य है, सब कुछ है। गुरु आदेश को कभी उल्लंघन नहीं, कोई भी कोई आश्रम में कोई उल्लंघन नहीं करना चाहिए गृहस्थ ब्रह्मचारी कोई, लेकिन ब्रह्मचारी विशेष उसमें गुरु के घर में रहता है, उसकी घर बार नहीं रहता है। ब्रह्मचारी और फ्लैट कहीं खरीद के रखेगा तो ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी गुरु के घर में रहेगा। ब्रह्मचारी गुरुकुल वसंत पुरोहितम आचरण दासवत नीचे, गुरु शुद्ध शुद्ध गुरु को अपने दृढ़ भाव से अपने सुहृद मित्र एकमात्र जानते हुए उनके निर्देशन को कड़ाई से पालन करें। गुरु के आश्रम में रहकर गुरु निर्देशन पालन करता, जो भिक्षा मांगेगा लाकर गुरु को देगा। ब्रह्मचारी बैलेंस नहीं रखेगा, बैंक बैलेंस नहीं, बैंक डिपोजिट कर रखेगा तो वो ब्रह्मचारी नहीं है। पैसा आस्ते आस्ते होगा तो फिर उसकी मन इंद्रिय विचलित होंगे, फिर वो लाल कपड़े नहीं रहेगा, सिर्फ संचय करना गृहस्थ का नहीं, सर ब्रह्मचारी का काम नहीं, ब्रह्मचारी समर्पित रहेगा। उसी प्रकार नारद जी ने आगे भी सातवें स्कंध में बारह अध्याय ब्रह्मचारी के बारे में, चौथा अध्याय विशेष रूप में गृहस्थ को चर्चा करते हैं। वासुदेव अर्पण सख्या, सब कुछ वासुदेव में वो भी अर्पण करना चाहिए, कौन गृहस्थ, गृहस्थ को भी जानना चाहिए सब कुछ वासुदेव के है, मेरा नहीं, मैं निमित्त हूँ, मैं मेरा को हटाना, किसी भी आश्रम ये को हटाना, मैं मेरा ये इसको हटाना चाहिए। और गुरु निर्देशन को ब्रह्मचारी भी पालन करना चाहिए और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी गृहस्थ को भी पालन करना जरूरी है। गृहस्थ आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया, गुरु शिक्षा प्रवेश किया, गुरु स्वीकार किया तो किसी भी आश्रम के लिए किसी भी अपराध न करें, नाम अपराध, गुरु के आदेश को अवज्ञा करना और साधारण समझना, इसलिए गुरु निर्देशन को पालन करें। तो इसी प्रकार हम यदि ठीक ठीक से शास्त्र के निर्देशन को पालन करेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हम जो वैष्णव बने हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं, तो हमारे लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर विशेष रूप में रुचि के मुनि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए महाराज गादी के पास में आए और इनको कहे कि आपकी जो कन्या मुझे जानने दो। कहीं से सुने होंगे कन्या के कुछ गुण रूपों के बारे में उस समय, तो वो आकर इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि आपकी कन्या मुझे भिक्षा रूप में दो, इसको दो, मैं इसको शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सीधे अप्रोच करते थे प्राचीन काल में, ऐसे ही ब्राह्मण बोलते थे पिताजी को, लेकिन इन्होंने कहा तो राजा ने देखी, बोले रवि ऋषि है, ब्राह्मण है, दान मांग रहा है और मैं गृहस्थ नहीं दूंगा तो अपराध भी होगा। लेकिन कुछ टाले, उसको टालना चाहते थे कि सोचते थे कि अयोग्य है ये, मेरे पत्नी ने, सॉरी मेरे जो कन्या इतनी सुंदरी है, गुणवती है, रूपवती है, और ये कहाँ से जंगल में रहने वाला तपस्या तपस्वी है, ये कहाँ से देगा। लेकिन जो ये कहाँ से मेरे लड़की को लड़की मेंटेन करेगा अपने। लेकिन जो सही राजा होते जानते, स्वयंभू मनु जानते थे किनके बारे में, पर्दमुनि, पर्दमुनि भी जो कि थे जंगल में रहते थे, स्वयंभू मनु दे दिया अपने कन्या अपने पुत्री को, किसको, देवहूति को, स्वयं जा कर दिए, स्वयं जाकर पर्दमुनि को जान दिए। यदि वो जंगल में रहते थे मुनि ऐसा ही बैरागी थे, लेकिन यहाँ पर ये मांगने के लिए आए, लेकिन ये कह रहे नहीं, सोचे कि ये अयोग्य है, ये कैसे मेरा पुत्र को साझा शादी करेगा। इसलिए वो तो बहाना करके कुछ बहाना के तौर पर उन्होंने कहे कि ठीक है मेरे पुत्री को तो दूंगा आपको, आपको शादी देने के लिए कुछ जो कुछ चाहिए मुझे, गहज चाहिए, उल्टे शुल्क चाहिए, शुल्क वही देता है जो कन्या दान करता है, वही देता है कन्या के साथ। लेकिन इन्होंने कहते कि नहीं मुझे तो शुल्क चाहिए, क्या शुल्क चाहिए ना, श्याम कन्या नांग ऐसे ही घोड़े मुझे दीजिए जिनकी कलर, जिनकी ज्योति चंद्रवत साम, उज्ज्वल चंद्रमा के साथ, पूर्ण चंद्रमा के समान उनके शरीर की कांति में उज्ज्वल हो और उनके एक एक कान श्याम वर्ण की हो, चाहे सीधे कान व उल्टे कान कैसे भी हो, श्याम वर्ण के एक कान रहे। ऐसे ही सहस्र दियतान, 1000 घोड़े मुझे ला कहीं से दान में दे पाओगे तो फिर मेरे कन्या को प्राप्त करोगे, क्योंकि हम कुछ क्या हुआ, मैं कुछ महाराज कुश की वंशज हूँ, हम लोग क्षेत्रीय है, वर्ण अलग है। जब वर्ण अलग अलग होता तो उनमें से जो शादी होता है, जो बच्चे जन्म होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ण संकर कहते हैं। लेकिन वर्ण संकर दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। जब प्रतिलोम होता है जब पिताजी की वर्ण हायर होता है और माताजी की वर्ण थोड़ा नीचे होता है कन्या की, तो इसको अनुलोम कहते हैं। ये वैदिक संस्कृति में सम्मत है, ऐसे ही शादी करना। लेकिन प्रतिलोम जब हो जाते हैं, माताजी ब्राह्मणी ब्राह्मण की वर्ण होता है और पिताजी क्षत्रिय होता, तो वो अनुमोदन नहीं है प्रतिलोम। लेकिन यहाँ पर ये ठीक है, अनुलोम है, क्योंकि वो ब्राह्मण है और जो इसको चाहते वो क्षत्रिय पुत्री है। लेकिन फिर भी उनके पिताजी परीक्षा करना चाहते, मैंने कैसे ही ठाकुर को मैं देना नहीं चाहते थे लड़की को उनकी शादी, लेकिन इसलिए कहे। तो आगे फिर पढ़ेंगे वो कैसे उनको प्राप्त कर लें। फिर वरुण के पास जाएंगे और दो घोड़े लेके आ जाएंगे, सुंदर आगे कहानी। जैसे ख्याल है गाधी के, गाधी का पुत्र विश्वामित्र बने, वो कैसे बनेगा अगले श्लोक में जिसकी आलोचना की गई है। रुचि के मुनि भी ब्रह्मर्षि थे और उनकी जब शादी हो गया कन्या के, मैंने इनके साथ सत्यवती के साथ, सत्यवती की माँ भी जानती थी कि ये बड़े तप मैंने तेजस्वी और सिद्ध योगी है, तो उन्होंने भी उनके पास में कामना की कि मेरे को भी एक पुत्र मिल जाए। और कन्या भी साथ मैंने सत्यवती भी साथ पुत्रवती होने, इसलिए रुचि के मुनि ने यज्ञ करके दो चरु बनाए, एक उनकी माँ के लिए सास के लिए और इनके उनके उनके पत्नी के लिए। लेकिन उनके पत्नी ने जो रानी ने सोची कि ये जो पति होता है अपने मात्र क्या पत्नी के प्रति विशेष स्नेह रखती है, तो इसलिए जो मेरे पुत्री के लिए जो चरु बनाए ये रुचि, जरूर इसका कुछ महत्व ज्यादा महत्व है। तो इसलिए वो जब रुचि की मुनि ने तरु बनाकर फिर चले गए स्नान करने के लिए गंगा में, तो इन्होंने कहे कि तो माँ ने कहा कि तेरा तरु मुझे दे और मेरा तू ले। और माँ कहे दे तो बेटी दे दी, लेकिन उन्होंने इस प्रकार चरु बनाए थे। जो चरु उनके उनके लिए था कि महाराज गाधी की पत्नी के व उनके सास का, जो रुचि की मुनि के सास के लिए था, तो वो एक चरु बना हुआ था कि उसको खाने से ब्राह्मण स्वभाव वाले पुत्र जन्म होगा, क्योंकि नहीं सॉरी क्षत्रिय स्वभाव वाले पुत्र जन्म होगा। तो क्षेत्रीय थे महाराज गाधी, और उन्होंने अपने पत्नी के लिए ऐसे चरु बनाई थी कि जिसको उसको खाने से फिर क्या होगा, ब्राह्मण स्वभाव वाले पुत्र जन्म होगा। लेकिन जो एक्सचेंज हो गया फिर उल्टे हो गए, इसकी चर्चा आगे आगे श्लोक में की जाती है। आगे फिर आलोचना करेंगे किस प्रकार वो फिर ऋषि की मुनि के जो ऋषि मुनि आकर जो सुने, उन्होंने बड़े क्रोधित हुए, उनको कहे कि तुम्हारा पुत्री बने, तुम्हारा पुत्र जो बहुत बड़े घोर क्षत्रिय बनेगा है, बहुत मार धर करेगा लोगों को, मार बहुत मर करेगा, ये करेगा बहुत क्रोधित। तो उन्होंने शांत करेगा उसको, बड़े मीठे बात कहे कहते ठीक है, तुम्हारा पुत्र नहीं होगा तो उसका पुत्र होगा। फिर ऋषि मुनि के पुत्र फिर जमदग्नि हुए, जमदग्नि की पुत्री कौन नए पुत्र कौन बने, परशुराम। सारे जगत को तीन बार लिखे सके यदि ब्राह्मण कुल में हुए तब भी, और महाराज गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। तो इसके वर्णन आज श्लोकों में डिटेल की जाएगी। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है? हाँ उनके इतिहास कुछ तो ऐसा नहीं, मैं कुछ जानता नहीं उनके इतिहास से कि वो, लेकिन उनके मन में शादी करने की इच्छा हो गई। जोगी थे, कई सालों से तपस्या करते थे, लेकिन उनके मन में इच्छा हो गई कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का। ऐसे सभी लोग, कुछ लोग के मन में ऐसा ही इच्छा उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ प्रारब्ध रहता है अजान भी क्यों इच्छा का पन्ने वो बेचे के प्रति क्यों प्रकट हो गया, नहीं वो आसक्त हो गया। उसका इतिहास बता देता पुराण में कि अजामबेड़े वो पूर्व जन्म में जो ब्रह्मचारी था, अरे वो नदी में स्नान करते करते इतने ज्यादा स्नान किया उसको तैरना नहीं आता, और पानी आगे बेहोश होकर नीचे अचेतन होकर मृत शरीर सबके समान पड़ा रहा, तो चेतना नहीं आ रहा था, बहुत प्रयास किए। और सब गुरुजन लोग ने कुछ के माँ तो पुत्र का माँ और कई लोग बोले कि इसको वो लड़की थी उस गाँव की, तो उसको कि तुमने डॉक्टर कहा कि देखो ये लड़की यदि स्त्री यदि उसके शरीर को स्पर्श करे, जवान लड़का है उसके अंग प्रत्यंग को स्पर्श करने से हो सकता है उसकी सेंसेस उत्तेजित उन्हें उठ सकता है, इसलिए स्कूल का एक कहे कि तुम थोड़ा इसके शरीर में हाथ रखो तो सिर में ऐसे तो आकर कहने पर उनकी माता पिता कहने पर गुरुजन कहने पर ऐसे की तो चेतना आ गए। लेकिन चेतना जब आ गया तो कहे कि तुम मैं ब्रह्मचारी हूं, तुम एक स्त्री मेरे शरीर को क्यों स्पर्श किया, मैं अभिशाप देता हूं तुम वेश्यावृत्ति करो, तुम वेश्या बन जाओ, इस जन्म नहीं होगा तो अगला जन्म बनो। तो मेरा क्या दोष है, बिना कारण से मैं तो तुम्हारे गुरुजन का पिता माता पिता की बात सुनकर तुम्हारे शरीर में ऐसे ही तुमको स्पर्श किया, तुम बिना कारण से मुझे अभिशाप दिया, यदि मैं वेश्या बन गया तो तुम मेरे प्रति आसक्त रहेगा, मैं आसक्त हूं मेरे प्रति। तो कुछ कारण शब्द में कुछ कहानी इतिहास रख सकते नहीं, इसके इतिहास का मैं जानता नहीं, पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। और उसी प्रकार भी बिल्व मंगल ठाकुर, इनकी भी पूर्वजन्म कहा जाता है, बिल्व मंगल ठाकुर वो क्या चिंतामणि वेश्या के प्रति क्यों आसक्त करता है, तो उसके भी कहानी है। वो पहले जन्म में भी सन्यासी थे, लेकिन कुछ सन्यासी होते हुए भी स्मशान में बैठे रहे, मैंने बैठ के अपने भजन करते, लेकिन एक बार देखी कि राजपुत्री मर गया राजा का लड़की, और राजा ने लेकर वो सारे लड़की के शरीर में सारे गहने सब सोना हीरा लीला मती तो गहना के साथ उसको झाड़ देकर जमीन के अंदर दे दिया। तो वो हंस रहे थे, माया वैष्णव ने बोले कि अरे देखो ये मर गया, इसके सब के ऊपर इतना गहना दे दिया, इसको ब्राह्मण वैष्णव को दान करने से क्या, तो ये सोना को बुलाकर बेच के कुछ अन्न भोजन बात कुछ इनको दान ब्राह्मण वैष्णव दान करने से आता रहेगा, तो इसलिए वो चला जाएगा। तो सबको निकाल कर खुदाई करके जमीन को सबको सबसे फिर ग्रहणा को निकालने लगे, ग्रहण करे वो परमात्मा था उसके ऊपर आसक्त था शरीर में, ये कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको यदि सोना चाहिए धन चाहिए जाओ मेरे पिताजी को बोलो, वो जो खटिया मेरे में सो रहा था खटिया के नीचे सोने की आचार वो तुमको दे देगा, मुझे किस्टर मत करो। फिर वो रख दिया, फिर जाए वो हाथ ले आया चार सोना इतना, तो फिर बेच कर को तो कुछ दान धर्म किया है, लेकिन बाद में फिर कई दिनों बचने बोले अभी तो वो प्रसात्मा छोड़ के चला गया होगा फिर, तो अभी तो उसको निकाल लो, दोबारा फिर गया उस जात खुदाई किया, अब पूरा नंगे शरीर स्त्री का जो देखा तो प्रेतात्मा ने अभिशाप दिया, सन्यासी होकर नंगे स्त्री का शरीर देखा है, तो इसलिए तुम फिर आसक्त रहोगे अगला जन्म में नेक्स्ट जन्म में स्त्री के प्रति मेरे शरीर के प्रति, वही चिंतामणि वेश्या बन के आए तो फिर आसक्त रहे। तो कहानियां कुछ ना कुछ इसके प्रारंभ कुछ कहानियां रहता है, तो कैसे व्यक्ति संसार में फंसता है, संसार में फंस जाते हैं, ऐसे ही गृहस्थ जीवन सृष्टि के प्रारंभ से निंदनीय नहीं है गृहस्थ जीवन, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर गृहस्थ धर्म को यदि फॉलो कर पाएगा है, इस कलि युग विशेष रूप से कलि युग में बड़ा कठिन है, सादा जीवन उच्चा विचार, ब्रह्मचर्य का कोई चिंतन नहीं, घर मंदिर में रहा और यहाँ पर टाइम पर भोजन उसको मारा चिंता नहीं पड़ता, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से क्या करेगा, बस आपने नियम पालन किया गुरु निर्देशन में जब किया और तक क्या अटन किया, 9 बजे प्रसाद रेडी है उसके लिए, प्रसाद खाएगा फिर अध्ययन करेगा फिर प्रचार करेगा, बस उसकी गुरु निर्देशन में कोई समस्या नहीं, और गृहस्थ कितने समस्या, गृहस्थ जाएगा धन कहाँ मिलेगा है, कहाँ धन मिलेगा, परिवार कैसे चलाएगा, चिंतन के पाओ। मैं प्रवचन सुनता था, एक व्यक्ति ने कहा था कि नहीं आजकल जो हस्बैंड होते हैं प्रकृति में हंसता हुआ बैल है, पत्नी के पीछे चलते बस को कहीं भी स्टेशन में जाता होगा देखोगे पति पत्नी दोनों हैं, और लेकिन पत्नी केवल वो पकड़ी होगी क्या हैंड बैग पकड़े चलते पत्ते, वो जो जो उसके पति होगा दो बच्चे को ऐसा पकड़ते होगा फिर खिंचते खिंचके बड़ा मुश्किल से जाता होगा, लेकिन कृष्ण भावना भावी भावना में ऐसा नहीं होता है, कृष्ण भावना स्त्रियाँ भी समझती है पति की पति उनके व्यवहार ठीक रहता है, लेकिन साधारण भौतिक जगत में ऐसा ही होता है। कृष्ण भावना में जब हम आए तो कोई भी आश्रम में रहे, लेकिन आश्रम आने के बाद फिर आश्रम के नियम को फॉलो करें, परिवार नहीं चला पाया तो घर छोड़ के माम वैरागी बन जाएंगे, ये अनुमोदन नहीं किया गया है, ये नहीं परिवार शादी कर लिया पत्नी स्वीकार कर लिया अभी धन कमाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, पैसे में परिवार चलाने में बच्चे हो गए स्कूल मेंटेन गया तो इससे खर्चा नहीं कभी मैं बैरागी बन जाऊंगा, ये रिकमेंड नहीं है, है? अच्छे खाने में अभी तक इच्छा है अच्छे अच्छे खाना स्त्री संभोग की इच्छा भी है, कामनाएं नष्ट नहीं हुआ है, फिर नकली वैराग्य बनने को नहीं रखता। हम स्कंद में देखते हैं कई लोग आते हैं, आकर स्कंद जैन करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। हमारे वृंदावन में देखे कई लोग घर छोड़ के आ जाते हैं और पत्नी बच्चा सब छोड़ के पूरा बैरागी फिर आके जैन करते, फिर यहाँ आकर फिर कई साल के बाद, दो चार साल के बाद फिर दूसरे विदेशी लड़की लेकर फिर शादी करके कहीं भाग जाता है, इंग्लैंड लंदन व अमेरिका कहीं भाग जाता है। ऐसा अनुमोदन नहीं, ग्रस्त है तो ग्रस्त के नियम को पालन करें, फिर अपने जमींदारी को भी निभाए। यदि सच्चा वैराग्य आया गुरु के निर्देशन है तो फॉलो करें। प्रभुपाद जी ग्रस्त आश्रम में थे लेकिन वो त्यागना नहीं चाहते थे, सोचते थे कि बात उनके गुरु जी ने 1945 में एक बार स्वप्न में आए कहकर अभय अभी संन्यास लेना है तो चार में निकलो हैं। तो प्रभुपाद ने सोचते थे कि इतने बड़े परिवार हैं, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, इनके सारे पांच बच्चे, दो लड़की ने सर दो लड़के तीन लड़की, इनके सब शादी कराना है, ये कितनी जमींदारी में कैसे भी संन्यास असंभव है। फिर दो साल के बाद फिर आ गए, फिर तीन तीन बार आ गए हैं। तो उनके गुरु जी बार बार आकर आदेश दिए, यानी कि प्रभुपाद में जमींदारी से ऐसे छोड़ के संन्यास नहीं, गुरु निर्देशन में गुरु आपको प्रोत्साहित करता है। तभी यही नहीं कि मेरे जमींदारी में चला नहीं पा रहा हूँ इसलिए परिवार को संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अभी इस कर्म में कड़क नियम है, कई गृहस्थ को संन्यास लेना है उसके पत्री का साइन चाहिए, नो ऑब्जेक्शन। पत्री ने साइन नहीं करेगी तो संन्यास नहीं मिलने वाला कई गृहस्थ इस कर्म। अपने जमींदार को ठीक से निभाना चाहिए, इस प्रकार के ब्रह्मचारी को भी ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर अपने नियम को फॉलो करें, गुरु के निर्देशन में खास गुरु घर में रहकर जो कुछ लाया गुरु को दें, गुरु की प्रशंसा के लिए फुल डेडिकेशन के लिए इसको मौका मिला, भाग्यवान है कौन। ठीक है और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ग्रंथराश्रम भागवतम की श्रील प्रभुपाद की।